परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है, वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
आत्माओं, वेद जो है भगवान की महिमा का ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। वेद सत्य है, यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश किया, ये तो झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद इसका अनुवाद करता भी मैं ऋषिदानंद है, देख कमाल की बात है, युद्ध भंग है पियागर तक तिन्नरी उतरने नहीं देता ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षिदानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से, महर्षिदानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया, मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से 241 पृष्ठ पे है। अष्टमो अध्याय यजुर्वेद भाषा भाषे, ये 13वां मंत्र है 13वां। इसमें क्या लिखा है, देव कर्तस्य एनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एव जन्म असि, पितर कर्तस्य एनस्य एव जन्म असि, आत्म कर्तस्य एनस्य एव जन्म असि, अनस्य अनस्य एव जन्म असि। अब इसका अनुवाद यहां किया इन्होंने 242 पृष्ठ पे, ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहां देखो 242 पर। अब यहां इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है, इसने फिर यहां उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के एनस्य माने अपराध के, एनस्य एवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहां मित्र लिख दिया, अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में, कि तो भगवान का जिक्र है नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, ये देखिएगा ये सत्यार्थ प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः, और ये कहां से प्रकाशित है, वैदिक यति मंडल वही है और ये दानंद मठ गुहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान भटकवाना मार्ग होते हैं। इसके प्रथम समुल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे सनेकरे सबको प्रीति करने योग्य है वह है परमेश्वर, सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहां मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे, बिल्कुल यहां है परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रांगी थोड़ी है, और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा बता कोई बात है। तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने, और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़ रहे ना गक दे तेरी अज्ञानता पता लग जाए, तो पढ़ देगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखे। एक बार हमारा जो ये करोथा कांड इन्होंने करवाया इसका यही कारण था, दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया, जय दानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दानंद के अनुयायियों को, ये सारे भागेंगे यहां से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये नू कानू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, इसे लिख के भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार प्रकाश में और ये यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में समाचार पत्र में कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, यो के जाने वेदों के बारे में, वो तो दानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं और वहां पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित था नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे, इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सके। अब यहां मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब फिर अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम आठवें अध्याय के वही तेरहवां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर, आप देवकर्तस्य दान देने वाले के एनस्य माने अपराध के पाप के, एनस्य माने अपराध को होते पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोले इन शब्दों को, एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध को होते पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो, और पितृकर्तस्य पिता के किए हुए एनस्य माने विरोधाचरण के नहीं पाप के लिखना चाहिए इसने, अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो, एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप घोर पाप घोर पाप के नाश करने हारे हो, विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञानदाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के और जो कुछ भी करता हूं या करूं उसको भी पाप नाश कर देता है, और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण देखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया, इति सिद्ध। अब पुण्य आत्माओं परमेश्वर स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान देने के लिए, उस तत्व ज्ञान को अपनी महिमा को परमात्मा स्वयं ही बताते हैं, और इस काल भगवान ने इन सब की बुद्धि अपने हाथ में ले रखी है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहता है ये कि अर्जुन बुद्धिमानों की बुद्धि बलवानों का बल मेरे हाथ में है। अब जैसे जब चाहे इनकी बुद्धि ऑफ कर दूं, जब चाहे इनकी ताकत खत्म कर दूं, जब चाहे दे दूं, जैसे श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु जी की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसने बुद्धि ऑफ कर दी काल ने श्री रामचंद्र जी की, उसको ये नहीं पता मेरी पत्नी कौन उठा ले गया। और उधर से ऊपर से पार्वती और शिव देख रहे थे, शिव जी ने प्रणाम किया, रामचंद्र जी रो रहे थे, डकरा रहे थे, वृक्षों से लिपट रहे थे, तो पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो, कि सामने भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती जी ने देखा वो तो एक व्यक्ति है, रो रहा है, भगवान कभी रोते हैं, मैं नहीं मानती है भगवान, मैं परीक्षा लूंगी इसकी। अब कहने का भाव ये है कि वो कथा अधिक ना बढ़ाएं। पार्वती जी भगवान शिव जी से के समय तक बोली कि नहीं, सामने कहने लगी मैं नहीं परीक्षा लूंगी, लेकिन थोड़ा सा भी आंख में चुन्नी होती, वो सीता रूप बनाकर पहुंच गई, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। श्री रामचंद्र जी ने देखते ही बता दिया कि हे दक्ष पुत्री, यहां कैसे आई, भगवान शिव को कहां छोड़ आई। वो शर्मिंदा होगी, ओहो सचमुच आप तो भगवान हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब वहां उसने रिमोट ऑन कर दी उसकी बुद्धि काल ने, वहां तो उसको तो पहचान लिया कि तू सीता नहीं पार्वती है, और अपनी पत्नी का पता नहीं उसने कौन उठा ले गया। फिर उसकी खोज करी, जैसे किसी की गाय गुम हो जा, कोई दुर्जा रहा है, कोई दुर्जा रहा है, फिर किसी ने बता दी राउंड उठा ले गया, दुर्जा के वहां ढूंढी। जैसे अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मार दिया, श्री कृष्ण जी अंतिम सांस गिने थे और पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मर गया दुर्वासा जी के श्रापवश। श्री कृष्ण जी दुर्वासा के श्राप का भी नाश नहीं कर सका, उसमें केवल औरतें शेष रहेगी, नर यादव सभी मर गए, जो गर्भ में थे वो बच्चे तो शेष थे ही। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप सभी औरतों को वहां ले जाओ, यहां लोग नर पुरुष रहे नहीं, आसपास ये जंगली लोग इनकी बेइज्जती करेंगे। अर्जुन श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत उनको लेकर चल पड़ा, रास्ते में भिल्लों ने पीटा, गोपियां ले गए, औरतों को ले गए, कुछ एक गहने सारे तोड़ दे गए, और अर्जुन के हाथ में वही धनुष था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, वहां उठा भी नहीं, उससे खड़ा खड़ा पिट रहा है भिल्लों से। तब अर्जुन रो रहा है कृष्ण को, कृष्ण बड़ा छलिया था, पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन था, हमारे साथ इसने छल ही छल किया, मैं मना करूं था महाभारत में नहीं लड़ूंगा, मुझे लड़ा कर छोड़ा, अब महाभारत में मुझे शक्ति दे दी, मारूं था एक मरे थे 20, आज वही अर्जुन वही गांडीव धनुष, आज मैं कांप रहा हूं खड़ा खड़ा, मुझसे उठ नहीं रहा। परमात्मा कहते हैं तुमने मूल का पता नहीं, विघ्न की जड़ कौन है, श्री कृष्ण छलिया नहीं था, ये तो यू काल ब्रह्म इसके हाथ में रिमोट है सबका। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये जितने भी ऋषि महर्षि ये वर्तमान के मंडलेश्वर पाकरे और सतलोक की महिमा गावे, इनकी बुद्धि ऑफ कर रखी सबने काल भगवान ने। अब ये देखे ऋषि, वेद बताते हैं भगवान गौर पाप भी काट दे, दान करने से पाप कटे, और प्रतिदिन के करे हुए कर्मों का भी डेली नाश होता है इस भक्ति के करने से, जैसे साबुन कपड़े का मैल लग गया, साबुन लाया साफ हो गया, हम डेली सत भक्ति करते हैं इससे जो अनजाने के कर्म होते हैं वो भी पाप नाश होते हैं हमारे, और प्रारब्ध तो होने होने हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, और दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे विद्वान, जैसे किसी मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं, तो ऐसे ये दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा जाने थे, वेदों का कख भी पता नहीं था। और पुण्यात्मा ये तो डबोगे पहले और वर्तमान में डबो दिया इन नकली पंथों ने, जैसे राधा स्वामी पंथ और इनके इसी से निकली हुई ब्रांच जैसे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा जगमालवाड़ी, यहां एक इसार के पास है गंगुआ गांव, और आगरा में ब्यास और मथुरा में जय गुरुदेव पंथ, भिवानी में दनौद वाला पंथ, दनौद में ताराचंद वाला, वो राधा स्वामी का ही उससे कुएं का जल है सबके पास, और सावन कृपाल मिशन दिल्ली में ठाकुर जी महाराज, ये सारे बिल्कुल इनको कैसे पता नहीं था, सतलोक का ठेका ले रहे, पता कोई नहीं। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को, जब धर्मदास जी भी ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और फिर तीर्थों पर जा रहा था भ्रमण करने के लिए, वहां परमात्मा मिले, पूरे ज्ञान से परिचित कराया, और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे मौखिक। तो पुण्यात्मा परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को, जब धर्मदास जी भी ऐसे ही पवित्र हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में जन्म था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और फिर तीर्थों पर जा रहा था भ्रमण करने के लिए, वहां परमात्मा मिले, पूरे ज्ञान से परिचित कराया, और सभी ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बताते थे मौखिक, परमात्मा को निराकार बताते थे कि वेदों में निराकार लिखा है। जब परमेश्वर धर्मदास जी को ऊपर लेकर गए, सब ब्रह्मांड दिखाए, सचखंड में अपनी सती थी दिखाई, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा रोम कूप में शोभा परमात्मा की, तख्त पर विराजमान है ऊपर बहुत बड़े सिंहासन पर, और नीचे से जो कबीर रूप में यहां से लीला कर रहे थे उस सहित ऊपर गए थे, उसी शरीर में ऊपर जाकर के परमात्मा ने अपने रूप पर स्तवर किया, फिर वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, और जो नीचे से गए थे 5 वर्ष के बालक यानी कबीर जी जो थे उसमें एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे धर्मदास जी को, जिंदा महात्मा वाले रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हो गए, और जो वहां परमात्मा का रूप था तेजो में वो खड़ा होके उस जिंदा वाले स्वरूप पर स्तवर करता है। धर्मदास जी ने सोचा कि ये है परमात्मा सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म जो तेजो में शरीर वाला, और ये इस महात्मा पर चौर कैसे कर रहा है, समझ में नहीं आई बात। इतने में वो तेजो में शरीर जिंदा वाले शरीर में यानी कबीर जी वाले शरीर में समा गया, जो यहां लीला करने आए हुए थे उसी रूप में, और अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में स्वयं विद्यमान है परमात्मा। फिर वापस आई उसकी आत्मा धर्मदास की, वापस आत्मा छोड़ दी और कहा मैं काशी में पाऊंगा वहां जाना। अब होश में आने के बाद वो सेठ जी चला सीधा काशी में, और पहुंचा वहां खोजा कि दुल्हाई का काम करने वाला कोई कबीर है, वहां देखे भगवान को चरणों में गिर गया, और फिर वार्ता करने लगा है परमात्मा अब आपने आंखों दिखा दिया मुझे कि आप परमात्मा साकार है, अब तो बात ही कंसेप्ट ही क्लियर हो लिया। फिर तो प्रभु ये वेद कतेब पुराण गीता इसका मतलब ये सब झूठे हैं? परमात्मा ने कहा नहीं, ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं, ये सदग्रंथ झूठे नहीं है, झूठे तो ये हैं जो इनको समझ नहीं सके, अज्ञानी है ये, और परंतु अभी चुप रहना किसी को बताना नहीं, अभी चली पीढ़िया होगी ना जब देखेंगे इनको। परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, और अब ये कोई नहीं मानता। धर्मदास कहने लगा भगवान आप कोई नहीं मान रही भगवान, ये देखिए इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। परमात्मा ने कहा बेटा शांति रख, चिंतित ना हो, मैं ऐसा दाव लगाऊंगा इनके, इनको चित मारूंगा सबने। अब परमेश्वर ने कहा कि मेरा और इस काल का 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक वायदा हुआ है, एक ये कंप्रोमाइज हो रहा है कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर में, और कलयुग में जब कितने जीव तू ले जाना, लेकिन आधार बनाना ज्ञान को। कबीर परमेश्वर से काल ने कहा था, क्योंकि वो कबीर परमेश्वर अपने ही पुत्र सहज दास के रूप में यहाँ आते हैं, उसको कोई पहचान नहीं सकता कि ये भगवान है। इस तरह आते, जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा सचखंड में देखा, जिस तरह धर्मदास जी ने देखा, और फिर उनसे भी कहा कि मैं बनारस में मिलूंगा, क्योंकि समकालीन थे दोनों ही, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये समकालीन थे उसमें। तो जब नानक साहिब जी वहां सचखंड से वापस आए, फिर अपने नौकरी जाकर बनारस में पहुंचे, खड्डी पर कपड़ा बुनते हुए देखा भगवान को, जो सचखंड में रूप देखा था वो इस रूप का था, फाई सुरुत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता, सबको आंखों में पानी भराई, गदगद है, और सबको कहता है लोगों देखो ये धानक रूप में बैठा भगवान, ये दुलाहे रूप में बैठा परमात्मा, ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये बड़ा ठग है, इसको पहचान नहीं सकते, ये भगवान है। आसपास के दुलाहे इकट्ठे हो गए और कहने लगे कहाँ से आए आप, कि मैं पंजाब तो आया हूं। अब कहने लगे देख इस नीरू के बेटे ने यू पंजाबी भगवान बतावे, अक्कल मारी गई, पागल कर दिया, सम्मोहित कर लिया इसने इसको, जादू जंतर जानता है। परमात्मा बोले प्यारी आत्मा अभी तो भी खामोश रहना, पूरी डिटेल बताई उनको, समझा अच्छी तरह के, अभी चुप रहना, ये भक्ति करो, तुम पुण्य आत्मा हो, अपना कल्याण करो, ये सतनाम है दो अक्षर का, तुम जाप करो, पर आगे मत बताना। तो नानक साहिब जी ने किसी को नहीं बताया, वो पूरे सिख समाज में वो सतनाम नहीं है, ऐसा बैन लगा गए वो, क्योंकि उनको भगवान प्यारा था, वो दृढ़ भगत थे, जो बोल दिया संत ने, जो परमात्मा ने फाजल है, ऐसे धर्मदास जी को कहा था। और फिर धर्मदास जी से परमात्मा बता रहे हैं कि काल ने मेरे से कहा था कि आप कलयुग में कितने प्राणी ले जाना, लेकिन जबरदस्ती ना करना, आपके ज्ञान को माने आपका, मेरे अज्ञान न मानो मेरा। परमात्मा बोले ठीक है भाई। तब उसने जो सारी स्वीकृति ले ली, वचनबद्ध कर लिया परमात्मा को, तब कहता है जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और इन बारह पंथों में द्वादश पंथ नाम जो ले ही, और मेरे मुख में आन समोई। और कहते और अनेक पंथ मचलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, देवल धाम और ये देव पुजवाऊं। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, तू कर लिए जो तूने करना है, हमने करना हम करेंगे। मालिक को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना हो, और दुखी हो बनाइए भगवान को मानने नहीं, और कलयुग में क्या होगा, इनकी बैटरी डाउन हो लेगी कतई, और जो साधना ये कर रहे हैं उन तलाब होना कोई नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है, फिर ये कति करलाट माचेगा, सब दुखी हो जाएंगे, और हम आएंगे या हमारा दास हम भेजेंगे, उसकी नाम लेते ही तो उसके नाम लेते ही सभी दुख दूर होने लगेंगे, ये प्यारी आत्मा हमें पहचान लेंगे। फिर तब कहा था धर्मदास कलयुग बीते 5505 और तब ये वचन होगा साचा, और पूरे विश्व में केवल एक कबीर का ज्ञान होगा, अपना ही ज्ञान होगा, मेरा ही ज्ञान होगा, और पूरे मानव समाज में शांति होगी, सतयुग जैसा माहौल होगा फिर दोबारा, और पूरा विश्व पूरी आत्मा प्यारी मेरी मुझे पहचानेंगी और सत भक्ति करेंगी, और दूसरा भगवान और दूसरा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहेगा। अब क्या बताया आपको, दिखाते हैं, प्रमाण देते हैं। पहले तो हम दिखाते हैं जैसे ये नकली पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा में, राधा स्वामी पंथ आगरा से ही निकला है, और ब्यास में भी आगरा से ही निकला है, वो श्री जयमल सिंह जी शिवदाल जी के शिष्य थे, और जयमल सिंह जी ने पंजाब में डेरा स्थापित कर लिया और जयमल सिंह जी के दूसरे उत्तराधिकारी नेक्स्ट श्री सावन सिंह जी हुए। श्री सावन सिंह जी के शेष हुए बलोचिस्तानी शाह मस्ताना श्री खेमामल, जिसने सच्चा सौदा सरसा हरियाणा में एक डेरा स्थापित कर लिया। ये समझो सभी एक ही कुएं का जल है। अब पुण्यात्माओं, एक मथुरा के अंदर जय गुरुदेव नाम से पंथ चला रखा है, उसका नाम है श्री तुलसीदास जी। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान का इस दास को परमात्मा का दिया हुआ बहुत अनुभव हो गया है और दास अच्छी तरह पहले से भी कहता आ रहा है कि जितने ये गुरु पद पर विराजमान है ये पुण्यात्माएं थी, बहुत पुण्यात्माएं थी। और ये काल का फंस गई, निकले थे भगवान पाने के लिए और मिल गए काल के दूत, आ गए इन सब, इन सब को भ्रमित कर दिया। जो शिवजाल जी थे उन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठे में बैठ कर हठ योग किया, सिद्धियां प्राप्त की और फिर लग्या प्रवचन करण। इससे भी अधिक पुनकर्मी प्राणी हैं ये जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक वर्तमान के मुखिया श्री तुलसीदास साहिब जी। एक विशेष बात है, राधा स्वामी पंथ के जितने भी गुरु हैं उन्होंने किसी ने अपने पीछे दास शब्द नहीं लगाया, इस जय गुरुदेव पंथ वाले ने अपने साथ में दास शब्द जोड़ा। ये पुनकर्मी प्राणी है पिछले जन्म का, अब फंस गया उस नकली टोल में, जीवन नष्ट कर लिया इसने अपना। अच्छा, शिवजाल सिंह जी, श्री शिवजाल सिंह जी जिसने राधा स्वामी पंथ चलाया, फिर श्री जयमल सिंह जी, संघ ये दास नहीं है संघ, और श्री सावन सिंह जी, फिर दर्शन सिंह जी, उसने वो क्या नाम, कृपाल सिंह जी ने वहां अपने मनमुखी डेरा चला दिया दिल्ली में, और फिर ये खेमामल सिंह जी, इन्होंने वहां शाह मस्ताना जी ने वहां चला दिया सरसा में, और इन्होंने अपने पीछे दास लगाए। अब ये पुनकर्मी प्राणी थे, शिवजाल से भी अधिक पुनकर्मी प्राणी थे ये, तो बचपन से सत्संग करने लग रहे हैं, सन 1954 से सत्संग कर आयु से पहले का। और इसने सन 1971 में एक भविष्यवाणी करी है, वो आपके रूबरू करनी अनिवार्य होगी। अब ये ना समझना कि दास अपनी आप महिमा गावे है, सच्ची बतावे है। और परमात्मा जब भी आए हैं या दास भेजा है, आप हमारे भगवान को कोई पहचानने वाला नहीं था, उसने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि अमर तीर, दास गरीब अधर बसु हमरा नाम कबीर। ए फिर कहा था, सुन रामानंद, राम हम और हम बावनर सिंह के, हम ही सारी सृष्टि के रचनहार हम ही हैं। और पुण्यात्माओं, जब रामानंद जी ने देखा था सतलोक में परमात्मा को और पृथ्वी पर भी मालिक को, और कहा था दो उठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारने आए हो मग जाओ, गरीबदास जी ने भी देखा ऐसे ही, तभी तो उन्होंने कलम तोड़ महिमा गाई है। अब पुण्यात्माओं, सन 1971 में इस जय गुरुदेव पंथ के श्री तुलसीदास साहिब ने एक भविष्यवाणी करी, इसको भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इसने तो यथार्थवाणी करी। भविष्यवाणी तो न्यू आगरा गई न्यू होगा, इसने न्यू क्या हो लिया, दिखाता हूं आपको। ये है एक पुस्तक, जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग दो, ये उन्होंने मंदिर बना रखे वहां पर, खाम खा पैसा ला दिया, बताइए इस मंदिर का के शर्मा मारेंगे। ये है ये महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, अरिविन की बैटरी डाउन होली, हाथ भी गल रहे हैं, इनके पैर भी डिफेक्टिव हो गए, परम संत तुलसीदास जी महाराज। ये पहला राधा स्वामी पंथ में एक संत देखा जिसने दास शब्द लगाया अपने पीछे, और इनके श्रद्धालु कहते हैं विश्व को शांति इन्हीं से मिलेगी। 1954 आज तक तो शांति हुई नहीं, दुनिया आग लाग रही। अब देखो इसके प्रकाशक कौन है, ये साकारी सदाचारी बाल संघ से संकलित प्रकाशक है दिव्या शर्मा, ये बेटी है कोई 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश, और यहां इसका मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसके पृष्ठ नंबर आपको पहले 59 दिखाते हैं। ये देखिए ये 59 पृष्ठ है 59, और इसमें 28 अगस्त ये शाकाहारी पत्रिका में छपी है, इनकी स्टेटमेंट 28 अगस्त 1971 की है। इसमें क्या कहा उसने कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा, उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा, उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब इससे फिर पूछने लगे लोग कि महाराज जी वो कब आएगा, वो महात्मा कौन है, वो कहां से है, कैसे जन्म हुआ उसका। अब वो क्या बताता है ये देखिएगा, ये 50 पृष्ठ पे, फिर वो तो 28 अगस्त 1971, उसके बाद सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर, 7 सितंबर 1971 को इसने सहकारी पत्रिका को अपनी स्टेटमेंट दी, यानी सत्संग किया, इन्होंने नोट कर लिया। इसमें क्या कहा है, 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, 7 सितंबर को पूरा 20 का हो गया, 8 सितंबर को 21 में लग जाता है। अब यहां देखिए, वह अवतार यानी जिसके विषय मैंने बताया है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। फिर आगे बता कि यदि अब क्या कहता है, यदि उसका पता बता दूं तो लोग उस पीछे पड़ जाएंगे, अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है, समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपने आत्माओं, दास आपको बार बार बहुत पहले से कहता है प्रवचन परमात्मा के विधान का कि ये पुनकर्मी प्राणी है, इनके पूर्व जन्म के साधनाएं भक्ति से ये चारद्र थे, और अब आगे चारद्र मिला नहीं, इनकी शास्त्र अनुकूल साधना है नहीं, ये 5 नाम जपते हैं, 5 नाम काल के, तो बैटरी तो इनकी डाउन होनी है होनी है। पुण्य आत्मा उस समय ये पुनकर्मी प्राणी का जो है दिव्य योग खुला हुआ था पिछले संस्कार से, इस 5 नाम तो नहीं, और उस समय इसने बिन की बिन बता दी, डे टू डेट बता दिया कि आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। जब तक इसका ठीक बैटरी कुछ काम करे थी, अरीब ना बताता गुरुवाला मारे जाओ ले लो नाम, यदि इनकी आज भी दिव्य दृष्टि काम करती है तो कह देना चाहिए कि भाई जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को स्टेटमेंट दी है वो बरवाला में आ चुका है, और जाकर कल्याण करा लो, और मैं भी आऊं हूं, चलो मानता तो ये है, अगर ये महात्मा है तो यदि इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुरंत बताना चाहिए, अगर नहीं करती है तो दास खोल देगा सारे प्रमाण देकर। अभी दिखाता हूं, और परमेश्वर कबीर जी ने जब वो प्रथम चरण में आए हुए थे कलियुग के, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे पृथ्वी पर मालिक, सह शरीर आए थे और मगर नगर से सह शरीर चले गए थे, लाखों व्यक्तियों के सामने उपस्थिति में सह शरीर चले गए थे, उनका शरीर नहीं मिला था, सुगंधित फूल मिले थे। उस समय कहा था कि धर्मदास, ये काल ने कहा था मैं 12 पंथ चलाऊंगा और तुम्हारा कबीर साहब सतलोक सचखंड कबीर पंथ का नाम लेकर के डंडोरा पीटेंगे और सभी गलत साधना करेंगे, तत्व ज्ञान उनके पास होगा नहीं, सब मेरे मुंह में आ जाएंगे, काल ने कहा था। और परमात्मा ने बताया था कि वो ये पंथ होंगे, पहले बता गए थे परमात्मा, और बारहवां पंथ गरीबदास का होगा, छुटाड़ी वाले का, और उस गरीबदास पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि उस समय तक 300 वर्ष बीत चुके होंगे और ये नकली काल के दूत मेरी इस अमर वाणी में फेरबदल बहुत कर देंगे। उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास द्वारा, आदरणीय गरीबदास द्वारा फिर दोबारा वह पूर्ति करवाई परमात्मा ने। अब उसमें बताया है कि उस बर महापंथ जो गरीबदास पंथ होगा उसमें फिर आगे चल के हम ही आएंगे, कबीर साहब कहते हैं परमात्मा, और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। तब तक इस ज्ञान को छुपा के रखना, अब ये सार्वजनिक ना करना, नकली दूता का हाथ लग जाएंगे, मंत्र वो दो अक्षर का मंत्र भी, फिर वो भी ये नाम देते पाओगे, वो अधिकारी है नहीं, सब जीव काल के मुख में जाओगे, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ पासपोर्ट कहीं काम नहीं देता। और नाम एक पासपोर्ट होता है जो विदेश भेजता है। अब दिखाते हैं आपको कबीर सागर में, देखो ये है कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिकृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। अब इसमें आपको दिखाते हैं 12 नकली पंथों का ज्ञान। यह कबीर वाणी पर पृष्ठ 136 पर, बोध सागर कबीर वाणी बोध सागर, और यहां देखिए द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना। परमात्मा कहते हैं इन 12 पंथ चलाओगा काल मेरे नाम तो है, और ये नाम होंगे उनमें, और इन 12 पंथा में कोई भी पार होने को नहीं हो पाओगा। अब यहाँ कहा कि ताते आगम कहे हम रखा वन समारा चूड़ामणि साखा, प्रथम जग में जागु भरमावे बिना भेद भेद वो ज्ञान चुरावे, दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार भेद, पांचवा ये छठा सत्यनामी पंथ। अब यहां से दिखाएंगे हम, ये है कबीर चरित्र नामक अध्याय है ये, और इसमें ये कबीर बोध ही है 1870 पृष्ठ पर, ये देखिएगा ये गद्य भाग में है, वो पद्य भाग में था, इसे अच्छी तरह समझ में आएगा। कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत, नंबर एक नारायण दास जी का पंथ, ये कबीर पंथियों ने फेरबदल कर दिया, ये है चूड़ामणि जी, और दूसरा यज्ञुदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमाली पंथ यानी कमाल का कमाल वाला पंथ, नौवां राम कबीर पंथ, फिर दसवां प्रेम धाम की वाणी पंथ, ग्यारहवां जीवा पंथ, और बारहवां है गरीबदास पंथ। अब यहां से क्लियर होने के बाद वो पद्य भाग समझ में होगा आप जी के, ये देखना। अब हम फिर आगे अध्याय कबीर वाणी पर, वो कबीर चरित्र था, बोध सागर वही चल रहा है, इसमें अलग अलग चैप्टर है 136 पृष्ठ पे। अब आओगी समझ में, द्वादश पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हमरा खा वन समारा चूड़ामणि साखा, यानी प्रथम तो चूड़ामणि है, ये गलत लिखा चूड़ामणि यानी गलत लिखा है, पर ये दूसरा जागू, तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वाणी, टकसार पंथ, यो भगवान दास पंथ, यो जीवा का पंथ, और ये सतनामी पंथ, ये जीवा का पंथ, वो भगवान दास पंथ, राम कबीर पंथ। और यहां देखो अब ये है वर्मा पंथ। वास्तव में वर्मा पंथ में क्या कहा है कि संवत 1775 हुई। यहां लिखना था संवत, ये 1774 लिखना था, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म वैशाख पंथ की पूर्णमासी को संवत 1774 यानी सन 1717 में हुआ था। संवत 1774 हुई, ये 74 होना चाहिए पर। और ताजिन प्रेम प्रगटे जग सोई, ये 136 पृष्ठ हम पढ़ रहे हैं। आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख मारी ले जीव समझावे, असंग ठोर जन्म नहीं पावे, बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, इस बर में मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी। और उस बर में पंथ के गरीबदास पंथ के जितने अनुयायी हैं, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को जावे। इनक्लूडिंग गरीबदास पंथ, 12 के 12 पे मालिक ने कलम मार दी है कि ये इनको सही ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि छुपा रखा भगवान ने, ज्ञान भी बताना नहीं था सही ज्ञान, लेकिन महिमा की वाणी पूरी लिख दी। अस्थिर घर का यानी सनातन परम धाम सतलोक का वो मर्म नहीं पावे, और ये 12 पंथ हम ही को जावे, 12 पंथ हम ही चल आवे। कबीर परमात्मा कहते बर में पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। फिर आगे क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना और तब मगहर मांडो मैदाना। वो कलयुग का प्रथम चरण था जब परमात्मा मगहर से सह शरीर गए थे। अब देखो यहां से 5505 तब ये शब्द होगा साचा, 5505 चला जाएगा जब मेरी बात साची होगी जो मैं आज कह रहा हूं कि बार में पंथ हम ही चलावे, सब पंथ मिटा के एक का चलावे। धर्मदास मोरी लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान है, गलत है भूलने, मूल शब्द बार ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान गोई तुम रखो, गुप्त रखो। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, ये बिचली पीढ़ी हंस नीत रही। पुणात्माओं आपके लिए करा परमात्मा ने सारा एरा फेरी, और अभी तक लाए गुमा के 33 अरब ज्ञान हम भाखा, और मूल ज्ञान गुप्त हम राख्या गोए राख्या। कहते ज्ञान हमने 33 अरब वाणी बोल दी, लेकिन वो मूल ज्ञान अभी क्लियर नहीं करया। और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब देखो यहां फिर इस कबीर वाणी में, परमात्मा की वाणी में यहां देखो एक और निर्णय किया, कति क्लियर कर दिया। ये है वही कबीर वाणी, कबीर बोध, और यहां 134 पर पढ़ेंगे। इसमें यहां देखिएगा, यहां बताया वंश प्रकार, वो किसे किसे होंगे 12 के 12 और 13 माह की सावगा। प्रथम वंश उत्तम, चूड़ामणि के विषय में कहा कि प्रथम वंश तो उत्तम होगा, और दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, ये सूरत गोपाल और फलाने फलाने ये सारे, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठे वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवें वंश पंथ विरोध, यो कमाल का पंथ है, और नौवें वंश पंथ पूजा, दसवें वंश प्रकाश, ग्यारहवें वंश प्रगट सारा, और बारहवें वंश प्रगट हुए उजियारा। यानी वर्मा पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा का कुछ कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। होए होए। और 13वें वंश मेटे सकलन दियारा। बोल सतगुरुदेव की जय। यो 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे। कहते एती दगा काल की समाई, तत् बिंदु की टेक रह जाई। इतने ये काल के दूत होते हुए भी हमारी तत्व ज्ञान की फिर भी टेक रह जाएगी, बचा खुचा रह जाएगा, और फिर हम सब क्लियर कर देंगे। अब पुण्यात्माओं, अब आपने देख लिया ये जय गुरुदेव पंथ वाले श्री तुलसीदास जी ने बिनकी बिन बात बता रखी है, जब तक इसकी बैटरी काम कर रही थी, डाउन ना हुई थी, इसने सारी सच्ची बता दी कि वो 1971 7 सितंबर को 20 वर्ष का हो चुका है। और यहां तक कहा कि मैं इंतजार करूंगा, तो ही बोल लिया इंतजार, बाबा जी बता दे सच्ची, बाग जाग जा तेरे वीर जिनको आपने बीच में फंसा लिया, ये नरक में जाएंगे, गिरगिल्ला तू जागा, आप जी ने जाना है। कारण क्या है कि जिस मजहब से यानी जिस पंथ से श्री तुलसीदास साहेब जी जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक माने जाने वाले मथुरा वाले जुड़े हैं, वो श्री शिवजाल जी से ही निकल बना है, उसका प्रारंभ वहां से हुआ है। और वो पांच नाम जाप करते थे, उन पांच नामों से वो भूत बने, और अन्य का क्या होगा आपको दिखाते हैं। श्री शिवजाल सिंह जी फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ जो ये कहते हैं, उसको ये परम धनी कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये अभी तक छुपा हुआ था, यू सतलोक का ज्ञान इस परम धनी ने स्वयं आकर खोला है। कबीर साहब की वाणी चुरा के पंसारी बना बैठा, हल्दी की गांठ एक चुरा के। और इसके इसे परमात्मा कहते हैं, बेखों के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, सतगुर धाम न जावेंगे ये 84 के ढोर। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ाने जिला जद्दर हरियाणा वाले ने कहा है, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाने। अब ये पांच नाम जापनी ये भूत बन गए अपने आत्माओं। अब ये पांच नाम जाप करते हैं कौन से, रंकार ओंकार ज्योति निरंतर और सोहम और सतनाम। इन सतनाम एक नाम भी बना रखा है, इन सतनाम के कह कह का पता नहीं सतनाम है क्या। ये पांचों नाम काल के, ये देखिएगा श्री तुलसी साहेब हाथरस वाले, ये तुलसी साहेब हाथरस वाले और हैं, और ये जय गुरुदेव वाले तुलसीदास साहेब और हैं। ये अन्य जीव घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की भाग एक और वेल्डियर प्रिंटिंग वर्क्स इलाहाबाद से छपी है। इसके 27 पृष्ठ पर लिखा है भेद पिंड और अंड का। और इस तुलसीदास आथरस वाले ने भी कबीर साहब की वाणी को पढ़ा, फिर भी अज्ञान भरा रहा इसके अंदर, लेकिन ये सच्ची लिख गया। क्या कहा है कि अंतर गुफा तहां चल जाऊं जहां साहेब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भख्या छठवा नाम गुप्त कर रख्या, अब इंद्र छटावी को नहीं। पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यो पांच बखानी। काल ने बोले थे पांचों, जीव नाम निज कह विचारी और जान बुझ दानी झकमारी। फिर यहां है जीव वचन चौपाई, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। ये इन आले पांचों तो हो गए काल के, पांचों नाम काल के जानो रंकारों कौर ये सारे। अरे जो कह उस्त न्यारा, एक तो सत नाम है ये दो अक्षर का है, और एक आदि नाम है यू सार नाम है, इन से मोक्ष होगा, इन पांच नाम से नहीं होगा, ते लाख जन्म लागेगी। अब ये पांच नाम जाप करने वाले और इस पंथ के प्रवर्तक श्री शिवजाल सिंह जी, इसके विषय में ये बताया जाता है, ये श्रद्धालु भगत कहते हैं राधा स्वामी वाले, कि हमारे गुरुदेव का ज्ञान, हमारे गुरुआ का ज्ञान वेदों और गीता से भी ऊपर का है। हम सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हमारा तो त्रिकुटी से शुरू होता है, बस नीचे हमने कोई लेना देना नहीं। और फिर कहते ऊंचे मंडलों पर पहुंच जाते हैं, तुमने मंडलाएं कहना मेरा खख का भी तुम्हारे पंथ के प्रवर्तक ने नहीं पता, तुम्हें कहां से पता होगा? जाओगे कहां मेडिटेशन करके? तुम्हारा ज्ञान ही झूठा है तो ध्यान कहां लगाओगे? तुम्हारी थ्योरी गलत है तो प्रैक्टिकल कैसे होगा? प्रैक्टिकल भी गलत होगा, आप इनकी थोड़ी सी थ्योरी दिखानी पड़ेगी। पुण्यात्माओं, ये एक रेगमार मारे दास आपके ऊपर, आपके अंदर जो अज्ञान भरा पड़ा है इस रेगमार से हटेगा, फिर ओरिजिनल पेंट दास करेगा, कई हजार वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक नहीं उतरेगा भी वो। अब परमेश्वर ने कहा है कि नौमन सूत उड़ जिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उड़ जाए दूजी बार। अब यू ऐसा सुलझा देंगे इस ज्ञान रूपी सूत को, अब इस कलयुग में यू ज्ञान बंद नहीं होगा, उलझ नहीं सकता, इसको भ्रमित नहीं कर सकता, भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। अब ये राधा स्वामी पंथ वाले ने तो कति दंत कथा बना रखी अपने अज्ञान की, और कहते हैं सीधे त्रिकुटी तो शुरू कर दे, हंसीत है त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड है, कोई पैदल पहुंच जाओ चाहे कोई रिक्शा में बैठ कर पहुंच जाओ, वहां जाने के लिए जोर लगेगा। उससे पहले यहां कितनी फाटक है पता आपने? मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री वर्मा जी, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव जी और पार्वती, और कंठ कमल में दुर्गा जी। ये बैरियर पार करने पड़ेंगे, और इनके मंत्र ये टैक्स मांगेंगे सारा, न्यारा न्यारा हिसाब करो हमारा। और जो प्रथम मंत्र आपको देते हैं ना पांच नाम का, ये दास ये पांच नाम नहीं, इनके निज नाम है इन महापुरुषों के, इन प्रधानों के। यही गुरु ग्रंथ साहिब में संकेत दिया है, पंच प्रधान है उनके पंच ही नाम है, ये गाटा जोड़े रंकार ओंकार, ये मंत्र नहीं है वो। अब इसमें फिर त्रिकुटी पर जाए पास से क्या होगा, ये प्रधाना के मंत्र हम इनको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देंगे, नोट ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे, फिर हम त्रिकुटी पहुंचेंगे। त्रिकुटी पर फिर सतनाम का काम शुरू होता है, दो अक्षर के नाम का, उसमें जो एक मंत्र ओम है ये ब्रह्म का है, इसको हम दे देंगे वहां, इसका अकाउंट क्लियर कर देंगे, फिर हमें छोड़ देगा, नहीं तो जाने नहीं देगा वहां से। जैसे श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे व्या मोक्षामी मा सुच। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता मेरा एक ओम मंत्र है, और तीसरे अध्याय में कहा कि यज्ञ करनी चाहिए, यज्ञ नहीं करता वो भी व्यर्थ है। तो पांचों यज्ञ और ये ओम नाम का जाप ये ब्रह्म तक के अकाउंट को क्लियर करेगा। यू कहता है कि तेने उसकी शरण में जाना है तो मेरे सत्र की सारी धार्मिक पूजा मुझे छोड़ दे, फिर एकम शरणम व्रज उस अद्वितीय परमात्मा सर्वशक्तिमान की शरण में तू जा, तब तुझे मैं मुक्त कर दूंगा सब पापों से। यानी क्योंकि पाप कर्म से हम यहां बंधे रहते हैं, पुण्य को हम स्वर्ग महास्वर्ग में खा लेते, बर्बाद कर देते ब्रह्मलोक में, और फिर पाप रह जाते उनको यहां गधे कुत्ते बना के हमसे भगवाता। अब हम इसका अकाउंट क्लियर कर देंगे, यह हमें छोड़ देगा। और फिर जो सतनाम में दो अक्षर है ओम और एक और तत्व गुप्त है, वो है अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का टैक्स, जो भौर गुफा में जाकर छोड़ देगा। और उसके बाद फिर थार नाम दिया जाता है, सत सतनाम नहीं, जैसे श्रीमद भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण समर्थ है, ओम ब्रह्म का सर्वपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक है, तत् अक्षर पुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में तीन पुरुष है, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष परम अक्षर पुरुष। और यहां 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्हीं के मंत्र बताए ओम तत् सत, तत् सत सांकेतिक कोड वर्ड दास बता सकता है, अन्य नहीं कोई बता सकता। और दास से सुनकर कोई और बांडे तो बांडे जाओ, वो अधिकारी नहीं है, उसे बनवाया हुआ पासपोर्ट फिर वहां पकड़े जाओगे, वो भी पटेगा और आप भी जो उससे उससे नाम ले लेगा। तो वो सार नाम है, जिसको सत बोला है वो सार नाम है, और सार नाम फिर सतलोक में ले जाएगा, वहां सथाई स्थान हमें दिलवाएगा, फॉर एवर के लिए सुखी होंगे। सतलोक में परमात्मा साकार है, वहां पर हंसात्मा भी सभी सृष्टि एज इट इज, तो उसकी नकल कर रखी है काल ने यहां पर, ये तो बनावटी खिलौने बना रखे है। और वहां कभी नाश नहीं होता जीव का, शरीर इतना बढ़िया मिलता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे परिवार होगा आपका आगे अभी, और बाद में खोलेंगे विशेष वेद, अभी इतना ही काफी आपको। अब यह बताते हैं, फिर उसके बाद त्रिकुटी से फिर आगे चलेंगे, दसवां द्वार अटला रहे सारे के सारे, बारहवें द्वार में जाके सतलोक है। ये देखिएगा, इनका थोड़ा सा ज्ञान और दलक दिखाते हैं, ये केवणी इसके साथ पांच नाम के जाप करने वाले से। ये है सार्वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये कहां से छपी है ये दिखाते बड़े प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब में। और ये कहां से छपी है, प्रिंटेड इन इंडिया बाय लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली, ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से। इसकी भूमिका में कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, अधूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह, ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज कौन है इनका, ये देखिए, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था, दास दूस को है इनके आसपास भी। और अपने आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा में जन्म लिया था। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता आथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। इस शिवदयाल ने भी ये वचन वातन तुलसी साहिब के सुन रखे थे आथरस वाले के। और बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था, यह पहले से पुनकर्मी प्राणी था, फिर इसने और हठ योग किया। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। अब यहाँ ये इसके ऊपर हम आगे चलते हैं, ये ज्ञान जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये इसका है शिवदयाल जी का। अब देखो ये देखो यहाँ क्या लिखा है, ये 13 पृष्ठ पे, ये खुलासा उनके सत्संग का खुलासा है शिवदयाल जी के। यहाँ देखो, यहां से अब एक दफा एक वचन, प्रथम वचन हम पढ़ेंगे दफा वाला। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचाए। अब यहां पर सतनाम को मुकाम, राधा स्वामी को भी मुकाम बताया, स्थान बताया, मुकाम माने स्थान। आगे देखो पहुंचावे, ये 14 पे। अब फिर तीसरे वचन में क्या कहा कि जितने भी आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम में। मंजिल माने स्थान, इनकी अनुवाद मंजिल माने स्थान शब्दार्थ के रखे इन्होंने, मंजिल माने स्थान। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम या स्थान से दो गया सतनाम, और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं राधा स्वामी में, ये मंजिल आठवीं भी राधा स्वामी यानी स्थान सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 15वें पृष्ठ पे, और ये है सार्वचन वार्तिक भाग एक। ठीक है, और चौथा वचन पढ़े, 1 3 आपन पढ़ दिया, चौथा फिर पढ़ाए आपको, उस वेदों से ऊपर का ज्ञान है ये। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्पष्ट कर दिया, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है, और जिसको ये भी सतनाम की आगे परिभाषित किया, सतनाम को, इस सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द, सतनाम, सतपुरुष करके बयान किया है।